महाबंध पुस्तक छठवी लेक्चर नंबर 7। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाहुणं। भूतबले प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाद्रवलविख्यातम् महाबंधम नमाम्यहम्। यह श्री भगवान बलि भूत बलि भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें छठवी पुस्तक में चौथा प्रदेश बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 40 पर 40। काल की प्ररूपना चल रही है और जघन्य की बात है। यहाँ जघन्य प्रदेश बंध में काल की प्ररूपना चल रही है। मार्गणाओं में देखते हुए यहाँ कोई हम योग मार्गणा की बात अपनी चल रही है, उसमें वैकिरेक का योगी की बात पढ़ेंगे। 40 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ
विशेषार्थ में नीचे से दूसरे लाइन पे राइट साइड में चुल्लक प्रवह प्रहर हुआ है, वो ग्रहण प्रमाण
के ग्रह के ग्रह प्रमाण ग्रहण करना वह ग्रहण प्रमाण। वैक्रिक का योगी और आहार का योगी जीवों में 7 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।
ये उत्कृष्ट काल जो एक समय रहता है वो उपवास की अपेक्षा से
हाँ
जघन्य
पर्याप्त उपवाद नहीं वैक्रिक का योग है, उपवाद नहीं लेना इसमें। मैंने शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर पहला समय मैंने शरीर पर्याप्ति पूरी होने का समय
तो फिर अच्छा यानी दूसरा योग कौन सा है, गोलमान क्या है इसका?
एकांत वृद्धि होगी, एकांत वृद्धि समाप्त हुई है और परिणाम का पहला समय है वहाँ जगन्य है।
जगन्य
यहाँ जगन्य की बात चली उत्कृष्ट की। अभी अभी हमने देखो औदारिक कायोगी में कैसे देखा है। औदारिक कायोगी जीवन में ऊपर से 5वीं लाइन 7 कर्मों के जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है।
वो देखा था ना सूत्र
तो पर्याप्ति का प्रथम समय लेना ये 25 पेज पर हमने देखा था। 25 पेज स्वामित्व में देखा था हमने। देखो नीचे का पहला 51 नंबर औदारिक कायोगी जीवों में 7 कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? जो सूक्ष्म निगोदिया जीव प्रथम समयवर्ती पर्याप्त और जघन्य योग वाला है। कायोगी में सूक्ष्म युगो वाले की अपेक्षा ही बात की है वहां पर। मैंने पहले जगन्य हो सकते नहीं अन्यत्र भी होता तो अदरवाइज अधिक भी बताते।
तो
वहां पर उसका जगन्य है एकांत वृद्धि से असंख्यात गुणा है, परिणाम योग का पहला जगन्य नेसेसरी जगन्य शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का समय। ये वैक्रेक का युग और आहारक का युग है, यानी उसका एक समय हुआ। जघन्य प्रदेश बंद का, जघन्य और उत्कृष्ट काल। जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है, यानी वो वैक्रेक का युग वाला एक समय में मर गया।
जो उत्कृष्ट की बात करिए पहले लाइन की बात, जघन्य तो हमने जघन शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का पहला समय,
उत्कृष्ट बंध की बात नहीं है, उत्कृष्ट काल की बात। उत्कृष्ट काल वहीं पर घटित होता है, दो समय घटित ही नहीं होते, एक ही समय घटित होता है। वही समय है शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का जब वहां जघन्य है, दूसरे समय में उतना ही नहीं रहेगा, इसलिए उत्कृष्ट काल दो समय या तीन समय नहीं कहा।
देखो जघन्य का काल कितना है,
जघन्य का जघन्य काल
एक समय,
और जघन्य का उत्कृष्ट काल।
तो उत्कृष्ट काल कब होगा,
उत्कृष्ट काल तब होगा जब लगातार दो चार समय तक होता रहा गया, तो जघन्य 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 दो तीन समय हो गए तो उसको हम उत्कृष्ट काल कहेंगे। ये जघन्य जघन्य एक ही समय होकर अजघन्य हो जाता है, जघन्य दो तीन चार समय होगा तो हम जघन्य। देखो आयु में लिखो, आयुबंध में जब हमने देखा था, जहाँ परिणाम योग में चार समय, पांच मनोयोगी में देखो 39 पेज निकाल, 80 नंबर का बीच में पॉइंट मिला, पांच मनोयोगी पांच वचन योगी जीवों में आठ कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है, क्योंकि घोलमान योग में ही उसका जघन्य हो रहा है, यानी वहां पहला समय वगैरह ऐसा नहीं लिया। यानी जघन्य काल यानी जघन्य जो प्रदेश बंध है लगातार चार समय तक हो सकता है। उत्कृष्ट योग की बात नहीं, उत्कृष्ट बंध की बात नहीं, उत्कृष्ट काल की बात है। अभी ध्यान कोई बात नहीं, हाँ, और वहीं पर जघन्य होगा, अन्यत्र नहीं। और ये बाय द टाइम मनोयोग शुरू होता है वो तो गोलमान में उठना तीन अधिक होता रहता है, वहां तो चार समय तक घटित होगा। ख्याल में आई बात ये? अब अजघन्य काल 40 पेज पर वैक्रेक काय और आहारक काय योगी की बात चल रही है। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय, यानी वैक्रेक काय योग शुरू हुआ, मनोयोग में से वैक्रेक काय योग में आया, वहां तो अजघन्य था और मरकर अन्य योग में चला गया, जो कोई कारवां है औदारिक मिश्र है, तो एक समय घटित हो अजघन्य का। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वैक्रेक का योग का काल ही अंतर्मूर्त है, तो लगातार उसने अजघन्य ही किया, क्योंकि जघन्य तो वो पहले समय में होता है शरीर पर्याप्ति के, अदरवाइज जब जब वैक्रेक का योग में करेगा तो अजघन्य ही कहलाएगा। ये बात ख्याल में है अजघन्य की? मरण हो सकता है ना, इसीलिए वहां पर भी एक समय होगा, दोनों के लिए यही बात है। अथवा जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय, अथवा कह के उन्होंने अन्यत्र भी उसको स्वीकार किया है। और जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, अथवा कहेंगे दूसरा उन्होंने विकल्प बता दिया, यानी वो अन्यत्र भी होता है ऐसा स्वीकार करके उन्होंने चार समय बता दिया, जैसे हमने मनोयोग वचन योग में देखा था वैसे। वैक्रिय कायोगी जीवों में आयु कर्म का भंग सामान्य देवों के समान है, यानी आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंद है, जो है जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय होगा। और जघन्य का एक समय से अंतर नहीं। आहार का योगी जीवों में आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल एक समय है। हाँ, क्योंकि आहार काल में कहीं पर भी हो सकता है ना उसका।
जघन्य प्रदेश बंध तो वो पहले समय में लेना है।
आहार मिश्र में शुरू किया है और शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते ही वहाँ जो बंद हुआ उसको जघन्य कहेंगे। पर उसको अगर जघन्य, अच्छा, काय योग शुरू हुआ और वहाँ जघन्य हुआ, अजघन्य भी एक अजघन्य जघन्य काल एक समय उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है।
मैंने
वहाँ पूरा हो गया उसका।
हाँ, नहीं तो अंत में चालू किया एक समय के लिए बस करके वो देखने का ही होता है।
आहार काय में से वो औदारिक काय में आया, वैकरिक कहाँ जाएगा?
सभी औदारिक काय में एक समय के लिए बात
है। या आहार का योग का एक समय बाकी था तब आयु का बंध शुरू किया और मनोयोग वचन योग में गया, ऐसा भी कह सकते हैं। ताल में आती है ना बात? यानी अभी जो ऊपर हमने अजगन्य प्रदेश बंध को वैक्रियक में देखा वो भी इस तरह से योग पलटा। इसलिए आहारक का योगी में एक समय जो उत्कृष्ट भी एक समय जो घटित है वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने का समय लिया, वैसा वैक्रियक में नहीं घटित होगा क्योंकि वहाँ कोई शरीर पर्याप्ति पूर्ण होते समय वहाँ कोई आयु का बंधन नहीं करेगा। वैक्रिक मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये अंतिम समय लेना ना वैक्रिक मिश्र का योग का। पहला एकांत वृद्धि, अच्छा एकांत वृद्धि होती रहेगी, बराबर है। पहला समय या हम या इसे ले सकते हैं ना, रुजुगति से आया और वहाँ उपपाद योग हुआ, वो भी ले सकते हैं। हाँ, पहला समय, नहीं पहला समय एकांत वृद्धि का भी हो सकता है, रूपपाद का भी हो सकता है। वैकिरिक मिश्र के पहले समय में उसको उपपाद योग हुआ, अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। यानी कोई जघन्य करेगा ही नहीं, अजघन्य ही होगा उसका। इसी प्रकार आहार मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों का भंग जानना चाहिए। आहार यहाँ तो उपपाद की बात नहीं है, पहला समय लेना। यानी एकांत वृद्धि का भी पहला समय। आयु कर्म के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, वो भी पहला ही समय लेना पड़ेगा ना। बांधना चालू था और उसने चालू किया तो पहला चालू था पहले औदारिक महीने था, मेरे आयु के बंध के काल में आहार मिश्र की ऐसा नहीं लेंगे, क्योंकि मिश्र में तो लगातार उसका एकांत वृद्धि वाली ही बात है। यानी उसके लगातार योग बढ़ता है, इसलिए जब कभी आयु का बंद करेगा मान लेते हैं ना, तो पहले समय में ही जगन्य होगा उसका। और अजगन्य प्रदेश बंद का पहले हमने कौन सा आहारक का देखा और ये आहारक मिश्र का देख रहे हैं। जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, यानी आहारक मिश्र के अंतिम समय में आयु बंध शुरू किया या पहले करते करते यहाँ पर मिट गया। उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कार्मण का योगी जीवन में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। ये उपपाद योग वाला लेना पहले एक समय के लिए। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय है। ये कार्मण का योग का काल लिया, जो जघन्य नहीं कर रहा है उसके अजघन्य होगा, और जघन्य जब हम कहेंगे उसका स्वामी तो वही सूक्ष्म निगोद वाला लेंगे उपपाद वाला। इसी प्रकार अनाहारक जीवन में जानना चाहिए विशेषार्थ वैक्रियक और आहारक का योग में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के प्रथम समय में होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। समझ में है ना बात, उत्कृष्ट काल यानी वो जघन्य एक समय होता है, उससे अधिक होता नहीं है, इसलिए उसी को उत्कृष्ट काल। तथा इन योगों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त होने से वहाँ इनके अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। यहाँ विकल्प रूप से यानी अथवा कहकर बताया था ना, इन योगों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है, सो भोलमान जघन्य योग से भी जघन्य प्रदेश संभव है यह मानकर यह काल कहा है। इस अपेक्षा से भी अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त बन जाता है। पर वहां पर भी गोलमान ही तो है ना पर्याप्ति पूरी होने के समय से। मेरे दो मत है, जो बीच बाद में भी जघन्य हो सकता है और ये पहले समय में होगा। वैक्रिक का योग में आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध सामान्य देवों के समान घोलमान जघन्य योग से होता है, इसलिए इसमें आयु कर्म का भंग सामान्य देवों के समान कहा है, यानी एक समय से चार समय होगा और अजघन्य के लिए एक समय और अंतर। एक समय इसलिए कि बंध शुरू किया और योग पलट गया। आहार का योग में आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध शरीर पर्याप्ति के प्रथम समय में संभव है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इस योग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त संभव होने से इसमें आयु कर्म के अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। यानी एक समय बाकी था तो फिर मूल शरीर में आ गए तो एक समय वाला ही हो जाएगा आहार का योग, और वहीं पर आयु का बंध शुरू किया ऐसा ले सकते हैं। अभी कोई मुझे देवलाली में पूछ रहे थे आहारक बनाया, प्रश्न ऐसा पूछ रहे थे, आहारक बनाया तीर्थंकर नहीं मिले उनको और फिर आहारक में से दूसरा आहारक बनाएंगे, ऐसे तो नहीं होता। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता, मतलब तीर्थंकर मिले इसलिए क्या ऐसी कोई नहीं, उनको ऐसा पढ़ाया। नाम लेके बता रहे थे विद्वान को, ऐसा नहीं होता मूल, और ऐसे नहीं मिले वगैरह ये बात नहीं बनती है, हो सकता है उनको फिर दोबारा दूसरे कहीं जाना है, वंदना आदि करनी है, तो मूल शरीर में आएंगे फिर दोबारा आहारक बनाएंगे। आहारक में से आहारक कैसे होगा? वैकृत मिश्र का योग में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंद भव ग्रहण के प्रथम समय में होता है, जिसको हमने उपपाद योग कहा था, इसलिए इसके जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा इस योग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, इसलिए इसमें और जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है, अंतर्मुहूर्त से कम नहीं होगा जघन्य का भी काल। आहारक मिश्र का योग में वैकृत मिश्र का योग के समान काल घटित हो जाता है, इसलिए आहारक मिश्र में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंद का काल वैकृत मिश्र के समान जानने की सूचना की है। यानी सात कर्मों के लिए वही होगा के जघन्य और उत्कृष्ट एक समय जघन्य प्रदेश बंद के, वहाँ उपपाद योग था, यहाँ आहारक मिश्र का पहला समय ले, और जघन्य के लिए जघन्य भी और उत्कृष्ट भी अंतर्मुख कहेंगे। वैकृत मिश्र में आहार आयु का बंध नहीं होता और यहाँ आयु का बंध है, इसलिए कहते मात्र आहारक मिश्र में आयु कर्म का बंध भी संभव है, इसलिए उसका काल अलग से कहा है। इसमें हाँ ना, मरण की अपेक्षा कहो या यहाँ शुरू किया और योग पलट गया, आहारक मिश्र में मरण नहीं होता। कार्मण का योग में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंद है, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव के प्रथम विग्रह में होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, यानी उनका ये उपपाद योग है, तथा इस योग का जघन्य काल एक समय है, इस योग का यानी कारमान का योग का, और उत्कृष्ट काल तीन समय है, जो तीन मोड़ से जाते हैं उनके तीन समय तक है, इसलिए इसमें सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। आहारकों में, अब यहाँ आहारकों में जो है ना, अनाहारकों में चाहिए था, आहारकों में कैसे अनाहारकों में एवं अनाहारक, हाँ अनाहारकों में आ के बदले अना करना, अनाहारकों में कार्मण का योगियों के समान व्यवस्था रहने से उनमें सब भंग कार्मण का योगियों के समान जाने की सूचना की है। स्त्री वेदी और पुरुष वेदी जीवों में, ये वेद मार्गणा यहाँ शुरू होती है, सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय। अब स्त्री वेदी जो है, स्त्री वेद सहित जो उपपाद योग होगा उनका, अब स्त्री वेदी में भी किसको लेंगे हम, हाँ असंगी को, परंतु यहाँ अपर्याप्त नहीं कहना, क्योंकि अपर्याप्त जो नपुंसक वेदी हो गए, ने असंगी के ही उपकार योग पर्याप्त लेना पड़ेगा, यानी वो पहला समय, इसलिए एक ही समय लेते। ख्याल में आती नहीं ये बात? स्त्री वेदी पुरुष वेदी संगी में भी असंगी में भी, असंगी का योग कम होगा और वो भी उपपाद योग वाला ले, कहीं से मरकर आया है, असंगी पंचमी में उत्पन्न हुआ है, इसलिए जघन्य प्रदेश बंध का, जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल स्त्री वेद में एक समय और पुरुष वेद में अंतर्मुहूर्त है। स्त्री वेद में एक समय कैसे होगा लक्ष्मी, आप सोच सकते हैं? देखो देखो, जगन ने पहले समय में हाँ उपशम श्रेणी से उतरते हुए स्त्री वेद शुरू हुआ, वहाँ अजगन्य बंध था, मर गया तो पुरुष वेद में उत्पन्न हुआ। अजगन्य के लिए जगन्य काल स्त्री वेद में एक समय, पुरुष वेदी होगा तो फिर मरकर पुरुष वेदी होगा, इसलिए उसको दोबारा श्रेणी चढ़ाना चाहिए, है ना?
दो
बार श्रेणी, ये उपशम श्रेणी उतरते हुए होगा श्रीवेद में। मैंने वही काल छोटा होगा ना, नहीं तो एक भाव भी ले सकते हैं उसका, वो बड़ा होगा। तथा उत्कृष्ट काल का भंग अनुत्कृष्ट के समान है, यानी जघन्य प्रदेश बंध का अजघन्य सॉरी जघन्य नहीं अजघन्य प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल बोलेगी आप? हाँ, उत्कृष्ट का कहो या अजघन्य का कहो, हाँ
वेदी लेना है तो पूर्व कोटि को तो प्रतिकूल कर दो।
क्यों, आप क्या कहते हो? सौ पल्ले पृथक तो क्यों नहीं,
सौ पल्ले सौ पल्ले
पृथक तो सौ पल्ले
सौ पल्ले सौ शादी
पृथक निकालो, क्योंकि स्त्री पर्याय में रहने का आप मनुष्य नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, पंचेंद्री है परंतु यहाँ पर अनुत्कृष्ट का निकाल स्त्री वेदी में। नीचे अनुत्कृष्ट का एक समय, उत्कृष्ट काल क्रम से सौ पल्ले पृथक और सौ सागर पृथक, इन्हें उसकी काय स्थिति लेना है। स्त्री वेदी के लिए सौ पल्ले पृथक और पुरुष वेदी के लिए सौ सागर पृथक, यानी उसने वो जघन्य किया ही नहीं, अजघन्य ही किया, यानी जब जब उत्पन्न हुआ तब भी अजघन्य ही रहा उसका। आयु कर्म का भंग देवों के समान है, गोलमान में होता है ना, क्योंकि ये पर्याप्त जीव है, एक से चार समय जघन्य के लिए, आयु कर्म के जघन्य के लिए मिनिमम मैंने जघन्य एक समय, उत्कृष्ट चार समय, अजघन्य के लिए
एक समय,
हाँ कहीं पर भी जघन्य करके अजघन्य किया और आयु का बंध पूरा हुआ, एक समय से अंतर्मुख, यानी अंतर्मुख तो उसने अजघन्य ही किया, ऐसा भी हो सकता है। अपगत वेदी जीवों में ये समझ में है ना बात, आयु कर्म की। अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल चार समय है, क्योंकि वहां तो गोलमान योग ही चलता है। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, क्योंकि अपगत वेद जो मार्गना है उसका जघन्य काल एक समय घटित होता है, यानी वेद का उदय मिल गया, अवगत वेदी हुआ और एक समय में मरण हुआ। विशेषार्थ, इन दोनों वेदों में यानी स्त्री वेद पुरुष वेद में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध इन वेद वाले असंगी जीवों के भवग्रहण के प्रथम समय में होता है। हमने ऐसे सोचा था ना, असंगी में उपपाद योग देखा था हमने, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है, तथा स्त्री वेद का जघन्य काल एक समय और पुरुष वेद का जघन्य काल अंतर्मूर्त होने से, ये हमने श्रेणी में देखा है। इनमें सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल क्रम से एक समय और अंतर्मूर्त कहा है। इनमें इनके अजघन्य प्रदेश बंध के उत्कृष्ट काल का भंग अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध के उत्कृष्ट काल के समान है, यह स्पष्ट ही है। यानी उनकी काय स्थिति लेना वहां पर, सौ पल्ल्य पृथक्त्व और सौ सागर पृथक्त्व, अभी अभी हमने देखा था इसको। इनमें आयु कर्म का जघन्य प्रदेश बंध देवों के समान गोटमान जघन्य योग से होता है, इसलिए यहाँ आयु क्रम का भंग देवों के समान जानने की सूचना की है। यानी जघन्य के लिए एक से चार समय और अजघन्य के लिए एक समय से अंतर्मुख। अपगत वेदी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध गोटमान जघन्य योग से होता है, इसलिए इसमें सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है, तथा बंद करने वाले अपगत वेद का जघन्य काल एक समय है, बंद करने वाले अपगत वेदी लिए और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से इसमें अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा है। अपगत वेद में जो बंद हो रहा है हाँ, वहाँ अपगत वेदी होने पर संयोजन का भी बंद है, यानी यहाँ तो मूल प्रकृतियां लेना है ना। अपगत वेदी होने पर सात कर्म तो बंद ही रहे नौवे गुण स्थान में, दसवें में छह बंदे गए। यानी अपगत वेद मार्गना का ही जघन्य काल एक समय घटित होता है, यानी वो अपगत वेदी हुए और एक समय में मर गए, तो देव में जाकर वेद का उदय शुरू हो जाएगा। तो अपगत वेद में उन्होंने एक समय तक अजघन्य प्रदेश बंध किया और नहीं मरे तो पूरा अंतर्मुहूर्त घटित होगा ही होगा, ये अजघन्य के लिए। इसलिए अजघन्य का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त कहा है। अब क्रोधादि चार कषाय वाले जीवों में ये मार्गना है कषाय के, सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये सूक्ष्म निगोध लब्धि अपर्याप्त के उपपाद योग लेना है। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, अब ये कषाय पलटने से हो सकता है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख है। आयु कर्म का भंग इसी प्रकार जानना चाहिए, यानी आयु कर्म में कैसे गोलमान योग से होगी, एक समय से चार समय तक जघन्य होगा, और अजघन्य का कैसा सोचेंगे कि आयु का बंधन शुरू किया, क्रोध से मान में चले गए तो एक समय घटित होगा और अधिक से अधिक अंतर्मुख घटित होगा। विशेषार्थ क्रोधादि चार कषायों में ओघ के समान भव ग्रहण के प्रथम समय में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंद होता है, और वो भी हमने इसमें देखा था सूक्ष्म निगोद लब्ध कर, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा इन कषायों का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त होने से इनमें सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मुक्त कहा है। यहाँ आयु कर्म का भंग इसी प्रकार जानने की सूचना की है, सो इसका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार यहाँ सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंद का काल कहा है, उसी प्रकार तो आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध का काल प्राप्त होता है, कारण स्पष्ट है। हाँ, यहाँ पर भी अगर हम ओ की अपेक्षा लगाएंगे तो लब्धिया पर्याप्त के
एक समय
तृतीय त्रिभाग का पहला समय लेना पड़ेगा,
तो जघन्य एक समय,
एक समय मैंने चार समय कहा था, एक समय से चार समय वो नहीं बात होगी। यानी एक ही समय घटित होगा ना, उन्होंने ऊपर लिखा ना आयु कर्म का भंग इसी प्रकार है, इसी प्रकार है ना, जघन्य एक समय, जघन्य का एक समय, हाँ त्रिभाग का पहला समय, और अजघन्य का एक समय क्रोध पलटने यानी कषाय पलटने से। वहां पर भी हमने अंतर एक समय से अंतर्मुक्त लिया था। ओग में हमने ओग में अगर लेना है
हाँ,
नहीं एक समय तो जघन्य हुआ ही, ओग में अजघन्य, ओग में अगर अजघन्य कहेंगे तो अंतर्मुक्त कहना पड़ेगा। ओग में आयु का अजघन्य एक समय होगा, निकल ओग में आयु का क्या लिया था, अंतर्मुक्त लिया था,
एक समय से अंतर्मुक्त करने को गोलकाल में लिखा।
मुझे क्या कहना है, पेज नंबर 34, ओघ में जहाँ देख रहे थे हम पहला पैराग्राफ जघन्य का प्रकरण में, चौथी लाइन में देखो, एक दो तीन चार आयु कर्म के मिला, जघन्य प्रदेश बंध का कितना काल है, जघन्य और उत्कृष्ट एक समय, वो तृतीय त्रिभाग का पहला समय, और अजघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुख, ओघ में उसका अंतर्मुख से कम नहीं ले सकता और अजघन्य के लिए वहां नहीं होगा, किसी मार्गना में हो सकता है, यहाँ कषाय मार्गणा में होगा या किसी योग में हो सकता है, जैसे वैकृत का योग में योग पलटा, यहाँ कषाय पलटे तो हो सकता है,
पर्याप्त युग में भी एक समय हो सकता है, पर्याप्त युग में गोलमाल में जघन्य होता है,
वो तो जघन्य एक से चार समय है,
और अजघन्य
एक समय इसलिए होता है कि दो जघन्य के बीच में एक बार अजघन्य हो सकता है, पहले समय में अजघन्य करके उस जघन्य कर सकता है,
तो एक
परंतु ओ में वो बात नहीं है, ओग में हम सूक्ष्म निगोद में लेते हैं, ओग की अपेक्षा जो सूक्ष्म निगोद का है वही जघन्य है, और उसको छोड़कर बाकी सारे अजघन्य है,
शोक में अंतर होती है।
हाँ, वही मैं बताना चाहती थी आपको। यहाँ अजगण्य एक समय से अंतर्मूर्त घटित होगा। विशेषार्थ पढ़ा ना हमने वास्तव, इसीलिए इसी प्रकार फिर ऊपर गए ना। यहाँ लिखा ना, इसका तात्पर्य कि जिस प्रकार सात कर्मों का जगन्य अजगन्य कहा, उसी प्रकार आयु कर्म का भी घटित होता है। ये खास इस मार्गना में घटित हो रहा है। आगे बढ़े के फिर दोबारा देखना, समझ में आ रही है ना। विभंग ज्ञानी जीवन में, ज्ञान मार्गना में विभंग ज्ञानी को लिया, क्योंकि मत्य ज्ञानी वगैरह तो ओग के समान होगी मेरे ख्याल से। बताया था तो वहां पर ओग में ये लिखा था, इसमें 35 पेज पर नीचे से चौथी लाइन, सामान्य तिरियांश एकेंद्रीय नपुसक वेदी मत्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी वगैरह वगैरह ओक के समान। बताया था ना आपको, यानी वो सूक्ष्म निगत की बात तो वहां पर भी घटित हो, इसलिए डायरेक्ट यहां विभंग ज्ञानी की बात शुरू की। तो विभंग ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का, जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है।
तो पर्याप्त
हो गया, परंतु वहाँ गोलमान योग है ऑलरेडी। विभंग ज्ञान होने के लिए मन पर्याप्ति पूर्ण होने पर होगा ना, छो पर्याप्ति पूर्ण होने पर, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर नहीं होगा। मन संबंधी है ना, उसमें संगी होना चाहिए, तो मन पर्याप्ति के बिना तो नहीं होगी। गोलमान में एक समय से चार समय, और अजगण्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है, दो जघन्य के बीच में भी हो सकता है, और उत्कृष्ट कुछ कम 33 आ गए। कुछ कम इसीलिए लिया, अपर्याप्त अवस्था में वो विभंग ज्ञान नहीं होगा। आयु कर्म का भंग देवों के समान है, यानी वही गोलमान योग में लेना है विभंग ज्ञानी में। जघन्य एक से चार समय और जघन्य एक समय से अंतर में, ये कैसे निकालना ख्याल में आ रही बात। विभंग ज्ञानी अभी संगी है, पंचेंद्रिय है, मिथ्या दृष्टि है, और उनके तो पर्याप्त जीव है, तो आयु का भंग तो परिणाम योग में होगा, जिसको हम कहेंगे गोलमान में। अब अभिनिबोधिक ज्ञानी श्रुत ज्ञानी और अवधि ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, उपाद में ले। अजगन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, इस सम्यक्त्व का काल लेते हैं, और उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर, यानी जघन्य और उत्कृष्ट ये सम्यक्त्व का काल लिया, यानी सम्यक दर्शन में रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर। आयु कर्म का भंग देवों के समान है, यानी परिणाम योग जिसको हम गोलमान कहते हैं उसमें होगा, तो एक से चार समय जघन्य का और जघन्य का एक समय से अंतर्मूर्त। इसी प्रकार अवधि दर्शनी सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्षायिक सम्यक दृष्टि और वेदक सम्यक दृष्टि जीवों में अजघन्य प्रदेश भंग का बंध का भंग अनुत्कृष्ट के समान है, जघन्य के लिए तो एक समय इसका हिंगी होता है और अनुत्कृष्ट के समान वो अजघन्य प्रदेश बन देखा। तो क्षायिक समय दृष्टि में हमने देखा था ना, सादिक तेती सागर और वैदिक समय दृष्टि में सादिक छासठ सागर लिया था। सादिक छासठ सागर हाँ, परंतु चार पूर्व कोटि प्लस छासठ सागर लिया था, कितना लिया था? अनुत्कृष्ट का निकालना पेज नंबर 33 गंग ज्ञानी आभि निबोधि अवधि दर्शनी आपने निकाल के बताया था। देखो अच्छा, अभिनिबोधिक ज्ञानी में साधिक छासठ यानी छासठ सागर और कुछ कम चार पूर्व कोटि लिया था। क्षायिक समय दृष्टि नीचे है, साधिक तेतीस सागर उसका, वेदक के लिए उत्कृष्ट काल छासठ सागर है, केवल छासठ सागर है, यानी सामान्य समय दृष्टि में छासठ सागर कुछ अधिक है, सामान्य में हम सबको इंक्लूड कर देते हैं। शायक में साधिक तैतीस सागर और वेदक में छासठ सागर। और साधिक छासठ सागर में जो ऊपर लिखा था ना अभिनिबोधिक वगैरह में, वहां छासठ सागर प्लस कुछ कम चार पूर्व कोटि लिया था। साधिक तेतीस हाँ, उसका अर्थ छासठ सागर प्लस कुछ कम चार पूर्व कोटि। अब विशेषण, विभंग ज्ञान में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध घोलमान जघन्य योग से होता है, इसलिए इसमें सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है, तथा यहाँ जघन्य प्रदेश बंध के मध्य में एक समय तक अजघन्य प्रदेश बंध हो यह संभव है, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय कहा है। विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इसमें उक्त कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यह आयु कर्म का भंग देवों के समान है, यह स्पष्ट है, इन्हें वो भी गोलमान युग से होता है। अभिनिबोधिक आदि तीन ज्ञानों में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध प्रथम समयवर्ती तदवस्थ ने भ है वहाँ तद्भवस्थ जीव के होता है, वो द के नीचे है, इसलिए इनमें सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा इन ज्ञानों का जघन्य काल अंतर्मुख यानी समय क्रम रहने का और उत्कृष्ट काल साधिक छासठ सागर होने से इनमें सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मुख और उत्कृष्ट काल साधिक छासठ सागर कहा है। यहाँ भी आयु कर्म का भंग देवों के समान है, यानी गोलमान योग में होता है, यह स्पष्ट ही है। यहाँ अवधि दर्शनी आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें अभिनिबोधिक ज्ञानी आदि के समान काल घटित हो जाने से वो उनके समान कहा है, मात्र क्षायिक समय दृष्टि और वेदक समय दृष्टि का उत्कृष्ट काल भिन्न प्रकार है। हमने अभी देखा साधिक तेतीस केवल 66 साल है। इसलिए इनमें सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंद के काल को अनुत्कृष्ट के समान जानने की सूचना की है। मनोपर्य ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल चार समय है। ये गोलमान योग होगा। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है यानी दो जघन्य के बीच में और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण। ये मनोपर्य ज्ञान में रहने का उत्कृष्ट काल है। आयु कर्म का भंग देवों के समान है यानी जघन्य एक से चार समय और जघन्य एक समय से अंतर्मुख। इसी प्रकार संयत सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि संयत और संयता संयत जीवों में जानना चाहिए। सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में अपगत वेदी जीवों के समान भंग है। सूक्ष्म साम्राज्य संयत में क्या कैसे कहेंगे सात का छह इसीलिए पूछा मैंने अपनी गाड़ी सात कर्मों की हो रही थी ना। सूक्ष्म साम्राज्य में छह कर्म बनते हैं
एक से चार समय
हाँ
और एक समय के अंतर में
यानी एक समय तो मरण की अपेक्षा भी होगा उपशम श्रेणी में
और दो चक्रे के बीच में भी एक समय।
हाँ। चक्षु दर्शनी जीवों में त्रस पर्याप्त जीवों के समान भंग है। त्रस पर्याप्त ने वहाँ उसकी काय स्थिति के लिए और त्रस पर्याप्त के समान किए हैं 2000 साल। विशेषार्थ मनोपर्य ज्ञानी योग में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध घोलमान जघन्य योग से होता है। इसलिए इसमें सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल चार समय कहा है तथा दो बार जघन्य प्रदेश बंध के मध्य में एक समय के लिए के बराबर दिख रहे हैं क्या स्पष्ट है अजघन्य प्रदेश बंध हो यह संभव है और मनोपर्य ज्ञान का उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। इसलिए यहाँ सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि प्रमाण कहा है। कुछ कम एक पूर्व कोटि ने पूर्व कोटि वाले मनुष्य ने 8वें साल के बाद संयम धारण किया बाद में मनोपर्य ज्ञान उत्पन्न हुआ तो कुछ कम पूर्व कोटि हो गया। यहाँ आयु कर्म का भंग देवों के समान है यह स्पष्ट ही गोलमान योग में होता है। यहाँ संयत आदि अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई है उनमें मनोपर्य ज्ञानी जीवों के समान काल प्ररूपणा बन जाती है। इसलिए उनका कथन मनोपर्य ज्ञानी जीवों के समान जानने की सूचना की है शेष कथन स्पष्ट ही है। अवलेशामि कृष्ण नील और कापोत लेशामि सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य उत्कृष्ट काल एक समय है। यही अपना सूक्ष्म निगत अभ्य पर्याप्त उपाधि यानी ओग के समान लेने हम उपमान योग उसमें जघन्य होगा सबसे। अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ अंतर्मूर्त इसलिए लिया है क्योंकि ये लेशा है ना अंतर्मूर्त में पलटेगी इस अपेक्षा से और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक 33 सागर यानी कृष्ण में जाने के और आने के बाद जाने के पहले आने के बाद अंतर्मूर्त बढ़ा देना साधिक में दो अंतर्मूर्त अधिक साधिक 17 सागर और साधिक 7 सागर आयु कर्म का भंग ओह के समान है। यानी एक समय जघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट एक समय वही लब्धि पर्याप्तक में लेना है। और अजघन्य का लिए अंतर्मुख तो कहेंगे अजघन्य के लिए एक समय भी घटित होगा ओके समान बता दिया।
अजघन्य
का अंतर
और
लेशा पलटेगी तो जघन्य का जघन्य एक समय होगा कि नहीं होगा। यहाँ उन्होंने आयु कर्म का भंग ओह के समान बता दिया।
ये मध्यम परिणाम में होता है तो वहाँ पे लेशा पलट के मध्यम परिणाम में आयु का बंध होगा तो आयु का बंध समय ही लेशा पलटे
क्यों नहीं पलटेगा।
पूछ
लेशा तो अंतर्मुख अंतर्मुख में पलट रहे देखो लोग में जो हमने जघन्य कहाँ लेते हैं लोग में जघन्य कब लेते हैं
आयु का जघन्य
आयु
बंद होते हैं वही मेरा
अच्छा यानी आयु का बंधन शुरू हुआ और लेशा नहीं पलटेगी
तो मध्यम परिणाम
मध्यम परिणाम में आयु का बंधन है चार्ट में कौन से चार्ट में ना ना उसमें तो सभी इसमें है परंतु मध्यम परिणामों में आयु बंद होता है इसलिए वहां पर उसका लेशा नहीं पड़ती है बराबर इसलिए अजगन्य को भी अंतर्मूर्त कहा वो बड़े समान है। जैसे उन्हें क्रोध में देखा वैसे यहां नहीं हो रहा लेशा का संक्रमण मध्यम परिणाम में नहीं होता है उसके एंड तक जाके नहीं नहीं संक्रमण की अपेक्षा नहीं है लेशाओं का जो संक्रमण होता है संक्रमण के जो स्थान है वो एग्जैक्ट मध्य से मध्य में नहीं जाएंगे। ठीक है पीत और पद्मलेशा में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंद का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है योगोपाद में लेना पड़ेगा है ना। और जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है तीर्यंश में पीत और पद्मलेश के साथ जन्म नहीं होगा मनुष्य देव में उपपाद और जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है सात कर्मों के वह जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मूर्त है ये लेशा पलटने की अपेक्षा होगी। और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक दो सागर पर साधिक 18 सागर है समझ में आती है बात ये मनुष्य तीर्यंचों में तो लेशा पलटेगी इसलिए अंतर्मूर्त लिया और जघन्य का एक समय नहीं कहेंगे
ठीक है मनुष्य में अजगन्य में एक समय की देखा में लेकर मरण हो गया अच्छा तो वहां पे नीचे होगी
जिसमें लेशा में मरेगा उसी लेशा में जन्मेगा वहां तो लेशा कंटिन्यूस रहेगी ज्यादा टाइम, और पहले अंतर्मुहूर्त तक वही लेशा रहती है ना। इसलिए अजगन्य का अंतर, जगन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल क्रम से साधिक दो और साधिक 18 सागर। आयु कर्म का भंग देवों के समान है, उन्हें जगन्य के लिए 1 से 4 समय, और जगन्य का 1 समय से अंतर्मुहूर्त। शुक्ल लेशा में एक समय हमने अजगन्य का यहाँ लिया था, कृष्णनील कपोत में नहीं लिया था। अजगन्य का हमने
शुक्ल दिशा के अजगन्य का भी
शुक्ल नहीं ऊपर कृष्णनील कपोत में वहाँ एक समय लिया था हमने। किसका? जगन्य का एक ही समय लिया था और अजगन्य का पूरा अंतर्मुहूर्त लिया था। वैसे पीतर पद्म में जगन्य कहाँ होता? तो गोलमान में होता है, इसलिए किससे 4 समय होगा। सात कर्मों का जगन्य उपपाद का लिया और आयु कर्म का 1 से 4 समय और अजगन्य का 1 समय से अंतर। अब शुक्ल लेशा में सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल 1 समय है, वही उपपाद में लेना। अजगन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है, लेशा का काल लिया। आयु कर्म का भंग देवों के समान है, जो अभी हमने पीत पद्म लेकर वैसा यहाँ पर भी होगा। विशेषा छहों लेशाओं में अपने अपने योग्य प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ जीव के जघन्य प्रदेश बंध होता है, इसलिए इन्हें सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल 1 समय कहा तथा इन लेशाओं का जगन्य काल अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर आदि है, इसलिए इनमें सात कर्मों के अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। स्वामित्व को देखते हुए कृष्णादि 3 लेशाओं में आयु कर्म का भंग ओघ के समान और पीत आदि 3 लेशाओं में वह देवों के समान बन जाने से उस प्रकार जानने की सूचना की है। अब उपशम सम्यक पर सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल 1 समय है, ये द्वितीयोपशम सहित उत्पन्न होने वाले जीव की बात होगी। द्वितीयोपशम में उपपाद देवों में उपपाद, क्योंकि इतना जघन्य उपपाद में ही सबसे जघन्य योग होगा। अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त है, वो उपशम समित्व का कार्य है, यानी जो उपपाद वाला है नहीं वो छोड़कर बाकी सारे जो अजगन्य ही है। सासाधन समित्व में सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल 1 समय है, वो भी उपपाद में। अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य काल 1 समय है, क्योंकि सासाधन समय तो कई 1 समय काल हो सकता है और उत्कृष्ट काल 6 अवधि प्रमाण है, यानी गुणस्थान का काल। आयु कर्म का भंग देवों के समान है, यानी गोलमान में होगा एक से चार समय
तो सात सात दिन का काली दे सकते हैं एक समय मिनिमम एक समय जगन्य अजगन्य दोनों के लिए
अपन जगन्य का अधिक से अधिक चार समय हो सकता है ना ये बताना आवश्यक है जगन्य का जगन्य एक समय उत्कृष्ट चार समय वो जगन्य का भी हम कहेंगे एक समय क्योंकि वो सात साल अंतराल पर मित्रत्व में चला गया आयु का बंधन शुरू होते होते और अंतर्मूर्त कहेंगे उसको समय मिथ्यादृष्टि जीवों में मनोयोगी जीवों के समान भंग है यानी उसका भी अंतर्मूर्त है सम्यक घी हुआ कि सम्यक मित डबल गौ जगन्य का इसलिए या तो दो जगन्य के बीच में ये आयु का बंधन शुरू किया और मिथ्यात्व तो में चला गया नहीं होगा ऐसे भी देवों में क्या देखते थे हम एक समय से अंतर अजगन्य का यानी दो बार जगन्य हुआ उसके बीच में भी हो सकता है पहले समय में बंधन शुरू किया तो अजगन्य ही किया और दूसरे समय में जगन्य कर दिया तो भी एक समय घटित हो गया ये सम्यक मिथ्या दृष्टि जरा बराबर करना डबल ग हुआ है दूसरे ग को म करो या बाजू में लिखो विशेषण उपशम सम्यक्त्व में प्रथम समयवर्ती देव के और सासादन सम्यक्त्व में प्रथम समयवर्ती तीन गति के जीव के सात कर्मों का जगन्य प्रदेश बंद होता है जिसको हमने उपपाद कहा इसलिए इनमें सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंद का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है तथा इन दोनों का जगन्य और उत्कृष्ट जो काल है इन दोनों का यानी उपशम सम्यक्त्व का और सासादन का उसे ध्यान में रखकर इनमें सात कर्मों के अजगन्य प्रदेश बंध का जगन्य और उत्कृष्ट काल कहा है सासादन में आयु कर्म का भंग देवों के समान है यह स्पष्ट ही है अपने स्वामित्व को देखते हुए सम्यक मिथ्यात्व में मनोयोगी जीवों के समान भंग बन जाता है इसलिए सम्यक मिथ्यात्व में मनोयोगी जीवों के समान काल प्ररूपणा जानने की सूचना की है यानी सात कर्मों का जगन्य कब होगा वहाँ गोलमान में ही होगा ना सम्यक मिथ्यात्व
एक समय के
हाँ और अजगन्य का एक समय से अंतर होगा संगी जीवों में सात कर्मों के जगन्य प्रदेश बंद काल जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ये असंगी से आए हुए की बात है ना हो वही लेना पड़ेगा उपपाद असंगी से आया हुए उपपाद अजगन्य प्रदेश बंद काल जगन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है ये उसकी काय स्थिति है और क्षुल्लक में से एक समय कम किया जगन्य वाला तो वहां अजगन्य का वो जगन्य काल हो जाएगा अच्छा संगी में भी संगी में अपर्याप्त लेना क्यों संगी अपर्याप्त में वो भी असंगी से आए हुए कोई कहना पड़ेगा ना आहारकों में आयु कर्म का भंग ओके समान ओके समान क्यों क्योंकि जगन्य तो एक समय में होता है यही तृतीय त्रिभाग का पहला समय लेना नहीं नहीं आहार के पहले की बात करें, आयु कर्म का भंग ओग के समान जो कह दिया है वो जगन्य का एक समय होगा, चार समय नहीं होंगे। हाँ, वो जगन्य का अंतर, क्योंकि ये संगी अपर्याप्त को में घटित होगा। आहारकों में या आहारक मार्गना में सात कर्मों के जघन्य प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, यानी जो आहारक के साथ ही उपपाद कर रहे हैं ना, यानी उपपाद में ही आहारक हो गया, वो भी सूक्ष्म निगो लब्धि पर्याप्त में लेंगे। तो एक समय होगा, अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय है।
अच्छा, वो श्रेणी में वर्णन करते थे और कर्मा का योग में चला गया।
श्रेणी में मरने से आहार का आहार रहा, उसमें क्या हुआ?
नहीं, मैं कर्मा का योग में आहार में एक समय के लिए उसको बंद किया और पीछे तापमान का योग
आहार में एक समय के लिए कैसे किया?
श्रेणी में उतरा
कहाँ से कहाँ?
ग्यारहवें से दसवें में है।
तो ग्यारहवें में बंद था कि नहीं?
नहीं था।
किसका नहीं था?
सात कर्मों का और छह कर्मों का
एक का तो था ना, वेदनी का तो था, यानी अन्य कर्मों का नहीं था कहीं भी।
तो ये आरत में एक समय कैसे, अर्जगनी का एक समय कैसे लिया? अजगन्य का एक समय किसी को हम पूछो,
यानी अलग अलग समय पर अलग अलग कर्मों को लेना पड़ेगा। जैसे अपने उपशम श्रेणी में जो कहा ना,
नहीं पर वहाँ पे तो
ये भी नहीं
तो सात का नहीं होगा, छह का होगा।
वही वही उपशम श्रेणी में मरण, मोहनी के लिए उसका नवे में लाकर मरण करना
पड़ेगा।
वेदनी में कैसे घटा घटित
करें? बंद चालू करें, बंद मानस कहते
हैं प्रदेश बंद तो है ना,
ये मानस
और सातों कर्मों को लिया हूँ मैंने।
सातों कर्मों का भरण की अपेक्षा एक समय लिया था ना, अजगन्य श्रेणी में भरण की
अपेक्षा। एक वाक्य पढ़कर, आयु कर्म के अजगन्य और अजगन्य प्रदेश बंद का काल ओग के समान है,
एक समय वरण करना,
एक समय से
अंतर्म
बराबर विशेषार्थ। इन दोनों मार्गणाओं में भी यथायोग्य भव ग्रहण के प्रथम समय में सात कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध होता है, अतः इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। संगियों में इस एक समय को अपनी जघन्य भव स्थिति में से कम कर देने पर उनके अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भव ग्रहण प्रमाण प्राप्त होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। तथा उपशम श्रेणी में जो आहारक एक समय तक सात कर्मों के बंधक होकर दूसरे समय में मरकर अनाहरक हो जाते हैं। उनकी अपेक्षा आहारकों में सात कर्मों के अजगन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय कहा। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए, छह कर्मों के अजगन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय लाने के लिए उतरते समय एक समय तक सूक्ष्म सांप्राय में रखकर मरण करावे। स्थिति के अनुभाग में तो ठीक है, हमें वहाँ बंध नहीं था, परंतु प्रदेश बंध तो वहाँ था ही सात्र का।
सभी
इसीलिए घटित कर रहे थे कि हम
श्रेणी में मरण की अपेक्षा हमने भी एक समय लिया था,
सभी अनुभाग में लिया था, प्रकृतियों में लिया था। मैंने वहाँ एक समय प्रदेश बंद तो है कि नहीं, एक समय वाला हो या कितने भी हो, कितने समय तक टिकता है उससे मतलब ही नहीं है ना। ठीक है, हम इन्होंने जो वो अपेक्षा छोड़ दी है, इसलिए कहते कि छह कर्मों के लिए अजघन्य प्रदेश बंद का जघन्य काल एक समय लाने के लिए उतरते समय एक समय तक सूक्ष्म सांप्राय में रखकर मरण करावे, और मोहनी के अजघन्य प्रदेश बंध का जघन्य काल एक समय लाने के लिए उतरते समय एक समय के लिए अनिवृत्तिकरण में मोहनी का बंध कराकर मरण करावे। इन दोनों मार्गणाओं में सात कर्मों के अजघन्य प्रदेश बंध का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। मैंने संगी की अपनी काय स्थिति बताई सौ सागर पुत्र, और आहारक की अपनी काय स्थिति अंगुल का असंख्या कर्म, तथा दोनों में आयु कर्म का बंध ओग के समान है, यह भी स्पष्ट है। क्योंकि संगी हो या आहारक हो, वो लब्धि अपर्याप्तक वाली बात ओग में ही ली थी उन्होंने। इस प्रकार काल समाप्त हुआ, यानी काल प्ररूपना यहाँ समाप्त हो जाती है। अंतर प्ररूपना अच्छा, ये प्रदेश बंध का नंबर 14 है ना, काल को दिया था ना 13 नंबर दिया था। अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से अभी उत्कृष्ट की बात सोचते हैं, जगन्य सोचते आए। उत्कृष्ट प्रदेश बंध छह कर्मों का होगा सूक्ष्म सांप्राय में, बराबर है ना। और मोहनीय का होगा संगी पंचनीय मित्रदृष्टि पर्याप्त उत्कृष्ट योग वाला, कहीं पर भी नीचे के मनुष्य कोई भी नीचे के कहीं पर भी, यानी यहाँ सात कर्मों का बंध हो रहा है, वहां मोहनी का उत्कृष्ट लेना है। अब यहाँ पढ़ेंगे ओह से छह कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का अंतरकाल कितना है, क्योंकि जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि भले वो दसवें में हो रहा है परंतु हर समय उत्कृष्ट नहीं होता है, एक या दो समय तक ही उत्कृष्ट रहेगा, फिर अनुत्कृष्ट होकर फिर उत्कृष्ट हो सकता है, तो एक समय का अंतर हो सकता है। और उत्कृष्ट अंतर कुछ को मर्द पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, शुरुआत में एक बार उन्होंने श्रेणी चढ़ी और अंत में एक बार श्रेणी चढ़ी। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है, वही दसवें गुण स्थान में। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त है। उत्कृष्ट अंतर दो बार श्रेणी चढ़ाना, यानी एक बार उसने दसवें में जाकर उत्कृष्ट बंद किया, फिर लगातार अनुत्कृष्ट करता रहा। अनुत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर चाहिए ना,
तो
छह कर्मों का नहीं 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 देखो उत्कृष्ट का अंतर तो ठीक है ना,
नहीं अनुत्कृष्ट का भी उत्कृष्ट अंतर वहाँ पे छठे गुण स्थान के अलावा तो अनुत्कृष्ट हो ही रहा है। अरे दसवें गुण स्थान के अलावा तो अनुत्कृष्ट ही हो रहा है,
हो ही रहा है,
हो ही रहा है। तो उसको उत्कृष्ट करा के ट्रेनिंग नीचे उतर के वापस,
नहीं नहीं ग्यारहवें गुण स्थान का काल खोलना पड़ेगा,
ग्यारहवें
का काल, क्योंकि आप नीचे लाएंगे तो भी अनुत्कृष्ट ही बंद हो रहा है ना। उत्कृष्ट के समय लगातार दो ही हो सकते हैं, उत्कृष्ट बंद की अपेक्षा अंतर दो ही समय होगा, जहाँ बंद ही नहीं हो ये बात लेंगे। जैसे उन्होंने यहाँ ग्यारहवें वाले बंद को बंद में लिया नहीं, यही बात सिद्ध हो, समझ में आई बात है। अनुत्कृष्ट नहीं हो तो ग्यारहवें गुण स्थान, उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त वो दो बार श्रेणी से नहीं होता है, ग्यारहवें गुण स्थान की अपेक्षा बंद ही नहीं था। मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य अंतर एक समय है, वो तो नीचे कहीं पर भी होता है ना, एक समय के अंतर से हो सकता है। उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, क्योंकि उत्कृष्ट तो होगा संगी पंचेंद्रिय में, और वो जो एकेंद्रिय में चला जाएगा तो उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। मोहिनी का बंद ही नहीं हो गए दसवा ग्यारहवा दसवा श्रेणी में, यानी उपशम श्रेणी में। दसवा यानी यहाँ तो बंद नहीं था, दसवें ग्यारहवें दसवें में बंद नहीं था, देखो चढ़ने वाले ने नौवे में बंद किया तो उसका अनुत्कृष्ट था, अनुत्कृष्ट का अंतर हुआ, फिर दसवें में बंद नहीं, ग्यारहवें में नहीं, फिर दसवें में नहीं, फिर नौवे में आने पर बंद हुआ, वहां पर अनुत्कृष्ट किया उसे। ये अनुत्कृष्ट का अंतर देख रहे हैं, अभी हमने ऊपर कैसे देखा, सूक्ष्म सांप्राय के लिए वो ग्यारहवें गुण स्थान में रखा था, अन्य कर्मों के लिए मुनि के लिए दस और ग्यारह गुण ही लेना है। आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। संगी पंचेंद्रिय में लिया था ना ये, देखो देखो निकालो चौदह में स्वामित्व देखना है। देखो आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामी कौन है? चारों गतियों का पंचेंद्रिय संगी, मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि। अभी वो सब पर्याप्त से पर्याप्त वाला चाहिए, और आयु का बंध कर रहा है तो आठ कर्म बंध रहा है और उत्कृष्ट योग वाला है। तो एक समय के अंतर से उत्कृष्ट कर सकता है, और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल है। यानी एक बार उसने उत्कृष्ट बंद किया था, फिर अनुत्कृष्ट करके एक ही निर्मय चला, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन करना। अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य अंतर एक समय है आयु कर्म में, यानी एक समय के लिए उसने उत्कृष्ट किया, यही उसका अंतर हो गया। और उत्कृष्ट अंतर सारिक 33 सागर ने आयु ही नहीं बांधी। सारिक में बंतर पूर्व कोटि पहले आयु बांधी थी, फिर वहां 33 सागर में जन्म वहां लास्ट में बांधी। तो कहाँ भेजना नरक में के स्वर्ग में? एक छह कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद उपशम श्रेणी में भी होता है, वहां यह संभव है कि इनका उत्कृष्ट प्रदेश बंद एक समय के अंतर से भी हो, और कुछ का मर्द पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के अंतर से भी हो। यही कारण है कि ओव से इन कर्मों के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर कुछ का मर्द पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। तथा जो जी उपशम श्रेणी में अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध कर रहा है, वह एक समय के लिए उत्कृष्ट प्रदेश बंध करके पुनः अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करने लगता है, उसके उसके अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का एक समय प्रमाण अंतर देखा जाता है। और जो जीव उपशांत मोह में अंतर्मुख काल तक अबंधक होकर, अबंधक लिखा है ना, नीचे उतरकर छह कर्मों का पुनः बंद करता है, उसके इनके अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का अंतर्मुख प्रमाण अंतर देखा जाता है। यही कारण है कि यहाँ इन कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त का ग्यारहवें की अपेक्षा यहाँ ली। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध एक समय के अंतर से भी हो सकता है, और संज्ञों के उत्कृष्ट अंतर काल को देखते हुए अनंत काल के अंतर से भी हो सकता है। इसलिए यहाँ मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर अनंत काल प्रमाण कहा है। ऐसे जैसे अन्य में कहा था, इसी प्रकार आयु कर्म के उत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण ले आना चाहिए। पहले छह कर्मों के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर घटित करके बतलाया ही है, उसी प्रकार मोहनीय के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर घटित कर लेना चाहिए। यानी वहां पर भी श्रेणी की अपेक्षा बात होती है। आयु कर्म का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध एक समय के अंतर से भी होता है और साधिक 33 सागर के अंतर से भी होता है, क्योंकि जो एक पूर्व कोटि की आयु वाले तीर्यचर मनुष्य प्रथम त्रिभाग में आयु कर्म का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करके, प्रथम त्रिभाग में का अर्थ होता है कि वन थर्ड जो बाकी है ना, पहली बार वो आयु का बंद कर रहा है, क्योंकि जब लब्धि अपर्याप्त की बात है तब तृतीय त्रिभाग की बात की थी। तृतीय त्रिभाग का पहला समय वो पूरी आयु का त्रिभाग किया था। इन्हें कथन में दो जगह अलग अलग अपेक्षा बताई उन्होंने। तो प्रथम त्रिभाग में आयु कर्म का अनुत्कृष्ट कृष्ण प्रदेश बंद करके और मरकर 33 सागर की आयु वाले नारकियों और देवों में यथासंभव उत्पन्न होकर ये तीर्यंच और मनुष्य नारकी में जा सकते हैं और अकेले मनुष्य मुनि देव में जा सकते हैं। अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर आयु कर्म का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद करते हैं, उनके अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का सादिक 33 सागर प्रमाण उत्कृष्ट अंतर देखा जाता है। इसलिए आयु कर्म के अनुत्कृष्ट प्रदेश बंद का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर सादिक 33 सागर प्रमाण कहा है, यहाँ सरल होने से जघन्य अंतर एक समय का खुलासा नहीं किया। उन्होंने अर्लिएस्ट बांधी, अंतर्मूर्त तक बांधी तो वहां अनुत्कृष्ट बांधी थी, क्योंकि उत्कृष्ट एक या दो समय तक बांध सकते हैं। उत्कृष्ट बंद तो 33 सागर के समय ही होगा, परंतु लगातार अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट नहीं होगा, अनुत्कृष्ट होगा। अनुत्कृष्ट करके वहां जन्मा और वहां आयु के अंत में आयु बांधी। अब यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तक नम सदा देतो।